लाउडेटर येसुस क्रिस्तुस, प्रभु येसु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु येसु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि कलीसियाई जयंती वर्ष 2025 हमारे विश्वास को मजबूत करे, हमें अपने दैनिक जीवन में पुनर्जीवित मसीह को पहचानने में मदद करे तथा हमें ख्रिस्ती आशा के तीर्थ यात्रियों में परिवर्तित कर दे। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है पवित्र परिवार के पर्व दिवस पर संत पापा फ्रांसिस का देवदूत प्रार्थना के पूर्व दिया गया संदेश, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओ, संत पापा फ्रांसिस ने नाजरेथ के पवित्र परिवार के पर्व दिवस 29 दिसंबर को तीर्थयात्रियों और विश्वासियों के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया। संत पापा फ्रांसिस ने देवदूत प्रार्थना हेतु जमा हुए सभी तीर्थयात्रियों और विश्वासियों को संबोधित करते हुए कहा,
Cari fratelli e sorelle, buona domenica. Oggi festeggiamo la Santa Famiglia di Nazareth.
प्रिय भाइयों एवं बहनों, शुभ रविवार। आज हम नाजरेथ के पवित्र परिवार का त्योहार मनाते हैं। सुसमाचार हमें बतलाता है कि यीशु 12 बरस की आयु में यरूशलेम के वार्षिक तीर्थ के उपरांत मरियम और योसेफ से अलग होकर खो गए, जिन्होंने उन्हें मंदिर में शास्त्रियों के संग वार्ता करते हुए पाया। सुसमाचार लेखक लूकस मरियम की मनस्थिति को व्यक्त करते हुए कहते हैं, जो यीशु से कहती है, बेटा तुमने ऐसा क्यों किया? देखो तो तुम्हारे पिता और मैं तुम्हें दुखी होकर ढूंढते रहे। और इसके उत्तर में यीशु कहते हैं, मुझे ढूंढने की जरूरत क्या थी? क्या आप यह नहीं जानते थे कि मैं निश्चय ही अपने पिता के घर में होऊंगा? संत पापा ने कहा, यह एक परिवार का अनुभव है जो शांतिमय वातावरण के क्षणों और नाटकीय समय को बदल देता है।
Una crisi dei nostri giorni, di un adolescente difficile e di due genitori che non riescono a capire.
यह हमारे समय में एक परिवार की जटिल परिस्थिति को व्यक्त करती है। एक युवक को अभिभावकों द्वारा समझे जाने में कठिनाई होती है। हम थोड़ी देर रुककर इस परिवार को देखें। संत पापा ने कहा कि क्या आप जानते हैं कि क्यों नाजरेथ का परिवार हमारे लिए एक आदर्श परिवार है? क्योंकि वह परिवार अपने में बातचीत वार्ता करता है।
Il dialogo è un elemento importante per una famiglia. Una famiglia che non comunica non può essere una famiglia felice.
एक परिवार में बातचीत करना एक अति महत्वपूर्ण चीज है। एक परिवार जो अपने में वार्ता नहीं करता है, एक खुश परिवार नहीं हो सकता है। संत पापा ने कहा, एक अच्छी बात है जब एक माता गाली देने के बजाय एक सवाल से शुरू करती है। मरियम यहाँ दोष नहीं देती और ना ही निर्णय करती है, बल्कि वह समझने की कोशिश करती है कि बेटे को कैसे समझा जाए जो सुनने में एकदम भिन्न है। अपने प्रयास के बावजूद, जैसे कि सुसमाचार हमारे लिए घोषित करता है, मरियम और योसेफ उनके द्वारा कही गई बातों को नहीं समझ पाते हैं। यह हमारे लिए इस बात को व्यक्त करता है कि परिवार में समझने के लिए सुनना अधिक जरूरी है।
Ascoltare e dare importanza all'altro. Riconoscere il suo diritto di esistere.
सुनने का अर्थ दूसरों को महत्व देना है, दूसरों के अधिकारों को पहचानना और खुले रूप में उन पर विचार करना है। बच्चों को आज इसकी जरूरत है। संत पापा ने कहा कि खाने का समय हमारे लिए परिवार में वार्ता का एक अति महत्वपूर्ण समय होता है। यह हमारे लिए अच्छा है कि हम खाने के वक्त मेज में एक साथ हों। यह बहुत सारी समस्याओं का समाधान करता है और सबसे अधिक पीढ़ियों में एकता स्थापित करता है। बच्चे जो माता पिता से बातें करते हैं, नाती पोते जो अपने दादा दादियों से बातें करते हैं, वे अपने में कभी बंद नहीं होते हैं या उससे भी खराब मोबाइल में अपना सिर झुकाए नहीं रहते हैं। संत पापा ने कहा,
parlare, ascoltarsi, questo il dialogo che fa bene e che fa crescere.
आप वार्ता करें, एक दूसरे को सुने, यह बातचीत है जो अपने में अच्छा है, जो हमें विकसित होने में मदद करता है। संत पापा ने कहा कि यीशु, मरियम और योसेफ का परिवार एक पवित्र परिवार है। इसके बावजूद हम इस बात को देखते हैं कि यीशु के माता पिता ने सदैव उनकी बातों को नहीं समझा। हम इस बात पर विचार कर सकते हैं और हम इस बात पर आश्चर्य ना करें यदि यह हमारे संग भी होता है, जहां हम एक दूसरे को नहीं समझते हैं। जब ऐसा होता है तो हम अपने में पूछ सकते हैं कि हम एक दूसरे को कैसे सुनते हैं। क्या हम सुनते हुए समस्याओं का समाधान करते हैं या हम अपने में चुपचाप क्रोधित और घमंडी हो जाते हैं?
Ci prendiamo un po' di tempo per dialogare. Questo che oggi possiamo imparare dalla Santa Famiglia è ascolto reciproco.
क्या हम वार्ता करने हेतु थोड़ा समय निकालते हैं? पवित्र परिवार से आज हम एक दूसरे को पारस्परिक रूप में सुनने की बात सीख सकते हैं। आइए हम अपने को कुंवारी माता को अर्पित करें और अपने परिवारों के लिए सुनने के उपहार की मांग करें। इतना कहने के बाद संत पापा फ्रांसिस ने सबों के संग देवदूत प्रार्थना का पाठ किया और सबों को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद प्रदान किया।
Angelus Domini, nunc siavit Maria.
Et concepit Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hominumque tusque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.
अपने देवदूत प्रार्थना के उपरांत संत पापा फ्रांसिस ने रोम और विभिन्न स्थानों से आए हुए तीर्थयात्रियों का अभिवादन किया।
Oggi rivolgo un saluto speciale alle famiglie qui presenti e a quelle collegate da casa attraverso i mezzi di comunicazione.
मैं यहाँ उपस्थित सभी परिवारों को अपना विशेष सहचर्य प्रदान करता हूँ। इसके साथ ही उन सभी परिवारों को भी जो संचार माध्यमों से जुड़े हुए हैं। संत पापा ने कहा कि परिवार समाज की एक मूल्यवान इकाई है जिसे हमें सहेज कर और सुरक्षित रखने की आवश्यकता है। संत पापा ने दक्षिणी कोरिया में हुई हवाई दुर्घटना के शिकार परिवारों की याद करते हुए दुर्घटना में मारे गए सभी लोगों के लिए प्रार्थना की। संत पापा ने सभी परिवारों के लिए प्रार्थना का आह्वान किया जो युद्ध के कारण पीड़ित हैं, खासकर यूक्रेन, फिलिस्तीन, इसराइल, म्यांमार, सूडान और दक्षिणी कीवू जो युद्ध से घिरे हैं। इसके उपरांत संत पापा ने रोम और इटली के विभिन्न प्रांतों से आए हुए तीर्थयात्रियों और युवा दलों का अभिवादन किया। अंत में उन्होंने सभों को रविवार और वर्ष की सुखद समाप्ति हेतु मंगल कामनाएं अर्पित की और अपने लिए प्रार्थना का निवेदन करते हुए सभों से विदा ली।
A tutti auguro buona domenica e auguro una serena fine d'anno. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci. Yeah.
वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। कैथोलिक कलीसिया ख्रिस्त जयंती के 8वें में है और इस खुशी के माहौल में हम बालक येसु की चरनी का दर्शन करने और प्रार्थना करने में कुछ समय बिताते हैं। आज 30 दिसंबर को संत पापा ने सभी विश्वासियों को चरनी के बालक येसु का दर्शन करने और उनके सामने खुद को प्रस्तुत करते हुए ईश्वर के प्रेम का अनुभव करने हेतु प्रेरित किया। संत पापा ने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आइए हम बालक येसु की चरनी को देखने के लिए रुकें, उसके प्रकाश और शांति को, उसकी गरीबी और अस्वीकृति को। आइए हम चरवाहों के साथ सच्चे क्रिसमस में प्रवेश करें, प्रभु के पास खुद को ले आएं जैसे कि हम हैं। येसु के माध्यम से हम ईश्वर द्वारा प्रेम किए जाने की सुंदरता का स्वाद चखेंगे। और 29 दिसंबर को पवित्र परिवार के पर्व दिवस पर संत पापा ने संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में भक्त समुदाय के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ करने से पूर्व नाजरेत के पवित्र परिवार पर चिंतन किया। इसी के मद्देनजर संत पापा फ्रांसिस ने रविवार को अपने एक्स पर 3 संदेश लिखा। पहले संदेश में संत पापा ने लिखा, येसु मरियम और जोसेफ का परिवार पवित्र है और फिर भी हमने देखा है कि येसु के माता पिता भी हमेशा उसे नहीं समझ पाते थे। हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए अगर कभी ऐसा होता है कि हम एक दूसरे को नहीं समझते हैं। जब ऐसा होता है तो हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या हमने एक दूसरे की बात सुनी है। दूसरे संदेश में संत पापा ने लिखा, परिवार में समझने से ज्यादा सुनना जरूरी है। सुनना दूसरे को महत्व देना है, उसके अस्तित्व और स्वायत्तता से सोचने के अधिकार को पहचानना है। आज हम पवित्र परिवार से जो कुछ सीख सकते हैं वह है एक दूसरे की बात सुनना। तीसरे संदेश में संत पापा ने लिखा, आज हम उन परिवारों के लिए एक साथ प्रार्थना करें जो युद्ध के कारण पीड़ित हैं, यूक्रेन, फिलिस्तीन, इसराइल, म्यांमार, सूडान, उत्तरी कीवू में। आइए हम युद्ध में फंसे इन सभी परिवारों के लिए प्रार्थना करें। और पवित्र परिवार के पर्व पर पवित्र मिसा समारोह की अध्यक्षता करते हुए कार्डिनल बाल्डो रेना ने याद किया कि कैसे तीर्थ यात्री अपनी बोझ और दुनिया द्वारा उन पर डाले गए बोझ से मुक्त होने के लिए यहाँ आते हैं। कार्डिनल बाल्डो रेना रोम धर्म प्रांत के संत पापा फ्रांसिस के विकर जनरल हैं, जिन्होंने संत जॉन लातेरन महागिरजाघर का पवित्र द्वार खोला, जो सभी धर्म प्रांतों में जयंती वर्ष की शुरुआत का उत्सव है। पवित्र द्वार खोलते समय कार्डिनल रेना ने प्रार्थना में कहा, जो लोग इस द्वार से होकर गुजरते हैं उन सभी को ईश्वर की कृपा प्राप्त हो। एक भेड़शाला में इकट्ठा होने वाले झुंड की तरह वे इस जयंती वर्ष में फलदायी जीवन जिए। अपने प्रवचन में कार्डिनल रेना ने उन लोगों को याद किया जो खुद को दूर और अयोग्य महसूस करते हैं, और उन लोगों को जो अपने दिल में गहरी कड़वाहट का बोझ ढोते हैं। उन्होंने बीमार कैदियों, दर्द, अकेलेपन और गरीबी एवं कठिनाइयों से दबे हुए लोगों को याद किया और प्रोत्साहन के शब्द कहे। और संत पापा फ्रांसिस ने वर्ष 2025 को जुबली वर्ष घोषित किया, जिसका शीर्षक है, आशा के तीर्थ यात्री आशा निराश नहीं करती। संत पापा फ्रांसिस ने विश्व के सभी कैथोलिक धर्म प्रांतों के धर्माध्यक्षों एवं महाधर्माध्यक्षों को पवित्र परिवार के पर्व के दिन दिनांक 29 दिसंबर 2024 को अपने अपने धर्म प्रांतों में जुबली वर्ष 2025 आशा के तीर्थ यात्री का उद्घाटन करने का आदेश दिया। इसी अध्यादेश का पालन करते हुए झारखंड के धर्माध्यक्षों ने अपने अपने धर्म प्रांतों में जुबली वर्ष का उद्घाटन किया। रांची महाधर्म प्रांत के महाधर्माध्यक्ष विंसेंट आइंद ने रांची के संत मरिया महागिरजाघर में जुबली वर्ष 2025 का उद्घाटन किया। इस उद्घाटन समारोह की धर्म विधि महागिरजा परिसर में आरंभ हुई। इस जुबली वर्ष के लिए एक विशेष क्रूज का निर्माण किया गया है। इस क्रूज को रांची कैथोलिक महाधर्म प्रांत में पल्ली के माध्यम से सभी गांव और टोला में आराधना के लिए घुमाया जाएगा। उद्घाटन समारोह में सभी लोग तीर्थ यात्री के प्रतीक के रूप में अपने हाथों में मोमबत्ती लिए क्रूज के पीछे जुलूस में गिरजाघर में प्रवेश किए। महाधर्माध्यक्ष विंसेंट ने अपने प्रवचन में कहा कि नाजरेत के पवित्र परिवार के समान ही अपने परिवार को प्यार, स्नेह और क्षमा से भर दें। मिसा के अंत में महाधर्माध्यक्ष ने इस जुबली वर्ष में आशा के तीर्थ यात्री के रूप में तीर्थ स्थल यात्रा करने का आह्वान किया। डाल्टनगंज धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष थियोडोर मस्केरेनहास ने डाल्टनगंज के महागिरजा घर में पवित्र जुबली वर्ष का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। पवित्र मिसा के दौरान अपने संदेश में धर्माध्यक्ष मस्केरेनहास ने जुबली वर्ष के महत्व पर जोर दिया और श्रद्धालुओं से प्रभु में अटूट आस्था के साथ पवित्रता की ओर बढ़ने का आग्रह किया। उन्होंने समुदाय को याद दिलाया कि उनकी आशा पवित्र क्रूस में निहित है, जहां मुक्ति मिलती है। यह क्रूस हर पल्ली में ले जाया जाएगा ताकि सभी लोग उस क्रूस का दर्शन कर प्रभु से प्रार्थना कर सकेंगे। और हजारीबाग धर्म प्रांत में धर्माध्यक्ष आनंद जोजो ने हजारीबाग के महागिरजा घर में रविवार को एक भव्य उद्घाटन समारोह के साथ जुबली वर्ष 2025 का उद्घाटन किया। इस समारोह में भाग लेने के लिए धर्म प्रांत के सभी पल्लियों से 10 प्रतिनिधि आए थे। रविवार सुबह जुबली उद्घाटन समारोह के लिए सभी विश्वासी होली क्रॉस इंग्लिश मीडियम स्कूल के प्रांगण में जमा हुए। वहां धर्माध्यक्ष आनंद जोजो ने जुबली वर्ष के महत्व और संत पापा के अध्यादेश को पढ़ सुनाया और जुबली वर्ष के लिए बनाए गए विशेष पवित्र क्रूस की आशीष दी। इसके बाद विश्वासी गण रोजरी प्रार्थना करते हुए महागिरजा घर के प्रांगण पहुंचे। वहां जुबली वर्ष का झंडोत्तोलन किया गया। इसके बाद धर्माध्यक्ष आनंद ने महागिरजा घर का प्रमुख द्वार खोला और पवित्र मिसा समारोह का अनुष्ठान किया। धर्माध्यक्ष आनंद ने अपने प्रवचन में कहा कि ईसा हमारे जीवन के आधार हैं, जो कभी नहीं मरेंगे और हमारे साथ रहेंगे, वही आशा के स्रोत हैं। हमें जीवन में उसे कभी नहीं त्याग देना चाहिए। उसके द्वारा हमें जीवन में सफल जीवन जीने के लिए बहुत अधिक आध्यात्मिक वरदान मिले हैं। विश्वास, प्रेम, दया, क्षमा, सेवा, आशा, धैर्य एवं ज्ञान हमें आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समृद्धशाली बनने की कोशिश करनी चाहिए। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।